शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली आज के गीत अनुसार है। बहुत पुराना गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। फिर उसके आगे का वाक्य है, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। तो बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने इसका बताया है। बाबा के पास आते हैं तो आत्मा का ज्ञान मिलते ही देही अभिमानी बनते हैं, तो जैसे इस दुनिया से मर गए और बाबा की दुनिया में जीते हैं। और फिर जब इस दुनिया से मर गए तो हमारे लिए सारी दुनिया ही मर जाती है, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। बाबा को देखते हैं, परमधाम को देखते हैं, नई दुनिया को देखते हैं, सूक्ष्म वतन को देखते हैं, पर इन आंखों से नहीं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से। तो बाबा कहते हैं, तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुमको वो देखना है और इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। परंतु ये ज्ञान का तीसरा नेत्र कभी कभी बंद हो जाता है या आधा खुला रहता है ना। कई बार कईयों की आंखें बहुत झुंझालू होते हैं, बहुत एकदम थोड़ा थोड़ा, पता भी नहीं चलता है कि आंखें खुली है या बंद है, इतना झुंझार होती है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र भी ऐसे ही, कोई किसी की आंख तीसरा नेत्र तो पूरा खुला हुआ है, वो सब देख सकते हैं, पर किसकी आंखें थोड़ी आधी खुली है, किसी की कम। और इसका मूल कारण क्या है, पूरी आंख ज्ञान के नेत्र की कब खुल सकती है, जब बाबा से सच्ची प्रीत है। अगर बाबा से सच्ची प्रीत नहीं है तो जरूर किसी देहधारी से प्रीत है, किसी के देह में फंसे हुए हैं, किसी के नाम रूप की याद आती है। तो फिर आंख तीसरा नेत्र जैसे झुंझार हो जाता है या बंद भी हो जाता है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया है कि बाबा ने तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है, बस इसी से देखो, बाकी इन आंखों से देखते हुए नहीं देखो। बाबा से सच्ची प्रीत जोड़ो। हम बाबा की ही गली में मरना है और जीना है, पर यही अगर बुद्धि में हो तो हमारे लिए ये दुनिया होते हुए भी जैसे नहीं है। तो मिसाल बाबा ने दिया है, जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके लिए पुराना हिसाब किताब सब पूरा हो जाता है, फिर जिस शरीर में प्रवेश करती है उसके साथ हिसाब किताब हो जाता है। तो जब तक वो पुराने शरीर से छूटकर नए शरीर में जाए, वो जो बीच का गैप होगा, उस समय उसको कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। फिर आकर्षण तो होगा, आत्मा का बंधन तो है ही है, लेकिन वो फिर उस नए शरीर में जैसे बंध जाती है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा भी ये सब बंधन इस कलयुगी दुनिया से अब खत्म होना चाहिए। तो बहुत सुंदर रूप से बाबा ने ये स्पष्ट किया है। सुनते बाबा के महावाक्य आज 4/1/2025 है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो, आत्मा का ज्ञान मिला तो अशरीरी बनने का भी ज्ञान मिला, तो तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। सारी दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाती है, कब, जब हम अशरीरी बन बाप को याद करते हैं। देह और दुनिया भूली हुई रहती है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? सभी के पास है ना ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो क्यों बाबा ने दिया हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र? उत्तर, ताकि, हाँ क्यों दिया है, ताकि अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए ये तीसरा नेत्र मिला है। नहीं तो क्या समझते थे, बस किसी भी रूप में याद करो, सब भगवान के रूप है, लेकिन बाबा जो है जैसा है तो उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। जैसे जब इन आंखों से दिखाई नहीं देता है तो कोई चीज है तो वो कैसी है पता नहीं चलती है, पर जैसे ये आंख मिलती है हम देख सकते हैं तो वो जो चीज जैसी है वैसे दिखाई देती है। तो ये तीसरा नेत्र भी बाबा को देखने लिए जो है जैसा है बाबा उस अनुसार दिखाई देता है। तो बाबा कहते उसी रूप में याद करने के लिए ये तीसरा नेत्र मिला है, परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है, हर वक्त काम नहीं करता ना कई बार, तो ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत रहे, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। बाबा ने आज नाक कान पकड़ लेती है, बाबा को मजा आता है ना नाक कान पकड़ने की बात जब बाबा कहते हैं, तो माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी से बच्चे धोखा खाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं? माया बाबा से प्रीत रखने नहीं देती है, वो देहधारियों से प्रीत हो जाती है। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं परंतु जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा, हाँ वेद शास्त्र भी भले पढ़ते हैं पर समझ नहीं सकते, तो मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है, मरना तेरी गली में माना, मरना माना वैसे शरीर छोड़ना, पर आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारे संबंध टूट जाते हैं, मामा चाचा काका माता पिता बच्चे सब कुछ सब खत्म हो जाता है, तो सारा संबंध टूट जाता है। तो गीत भी कहता है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो, तो ये दुनिया खत्म हो जाती है, सारी दुनिया मिट जाती है हमारे लिए, सारी सारा संबंध, हाँ ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, शरीर तो यहाँ है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं, निकल गई आत्मा तो न शरीर से संबंध रहा न सृष्टि से संबंध रहा, आत्मा नंगी बन जाती है, देह बिना बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, वापस महतत्व में तो नहीं जाना है, पुनर्जन्म में तो आना, ऐसे नहीं कि आत्मा चली जाएगी परम धाम में, पुनर्जन्म में तो आना है, वापस महतत्व में तो नहीं जाती है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में तो नहीं जाना है, हाँ चक्र के बीच में तो मूल वतन नहीं जा सकती, वो तो सब अंत में एक साथ जाएंगे, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ती है तो न ये कर्म बंधन है, आत्मा ने समझा शरीर छोड़ा बस हिसाब किताब उस जीवन से खत्म हुआ, तो उस समय न ये कर्म बंधन है न वो कर्म बंधन है जिसमें उसको प्रवेश होना है, जिस शरीर में भी उस समय कर्म बंधन नहीं है। जब वो शरीर से निकल गई और अभी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं किया है तो कोई कर्म बंधन नहीं है, तो न वो कर्म बंधन है, दोनों कर्म बंधन नहीं है। शरीर से अलग हो जाती है ना, फिर दूसरा शरीर लेती है तो वो कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते, तो बाप ने समझाया है। इस समय क्या है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। अगर किसको कहो ना तुम कितने बेसमझ हो, हाँ गुस्सा आ जाएगा, मुझे बेसमझ कहता है, मैं तो कितना समझदार हूँ। पर बाबा कहते, भगवान कहते, सब बेसमझ है, परंतु कोई अपने को बेसमझ समझते थोड़ी है। अपने को कितना अकलमंद समझते हैं, पीस प्राइस देते रहते हैं उनको, थोड़ा बहुत शांति के लिए कुछ राय सलाह राय दी तो उसको पीस प्राइस देते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझ सकते हो, वो तो जानते ही नहीं है। पीस प्राइस तो दी लेकिन क्या नहीं जानते, पीस प्राइस देने वाले भी नहीं जानते, लेने वाले भी नहीं जानते। क्या वो तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। शांति का मतलब ये थोड़ी है कि युद्ध को रुकवाया, वो तो जो समझो सलाह देते हैं या मत देते हैं तो और फिर युद्ध रुक जाता है, युद्ध रुक गया तो कहेंगे पर इसने सुलह कराई शांति दिलाई। तो बाबा कहते पीस का केवल ये अर्थ नहीं है, शांति का अर्थ केवल ये नहीं है युद्ध नहीं होना, युद्ध नहीं होते हुए भी कितनी अशांति है, तो इसीलिए शांति का केवल ये अर्थ नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं मन की शांति कैसे हो। अब बाबा कहते हैं मन की शांति तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मन का तो काम ही है संकल्प करना। हाँ जब परम धाम में आत्मा जाएगी तो वहां भी कोई संकल्प नहीं है, तो इसीलिए वहां तो पूरी शांति है। तो वो नहीं चाहते परम धाम नहीं जाना चाहते, मन की शांति कैसे मिले, मन की शांति कैसे मिले, वही कहते हैं। वो तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। अब ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। अब भगवान को तो वर्ल्ड में शांति चाहिए, दुनिया में शांति चाहिए, वो कैसे हो। मन की शांति तो दुनिया में हो ही नहीं सकती, यहाँ तक बाबा कहते हैं, क्योंकि मन तो सोचेगा। तो वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वहां तो है ही शांति, वहां के लिए तो नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वो तो है ही शांति धाम, हम आत्माएं शांति धाम में रहती है, परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं। पर वो जानते नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है, यहाँ तो मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि मन तो हमेशा सोचता ही है। हाँ सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, वो सुख है, वो सुख के अनुसार वो शांति है मन के अंदर, वो बाबा कहते हैं संपत्ति है, तो इसीलिए शांति भी है। तो सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है जिसकी स्थापना बाप करते हैं, यहाँ तो कितनी अशांति है। ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो, सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वो वर्षा था बाप का। सुख शांति संपत्ति का वर्षा सतयुग में भारत में था, वो किसका वर्षा था, बाप का। और दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा किसका है, ये रावण का वर्षा है। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो, आत्माओं को समझा रहे हैं तो क्या जानते हम कि नॉलेज तो आत्मा में होती है, शरीर को नहीं समझाते। शरीर तो जड़ है, वो तो साधन है, पर समझाते बाबा किसको? आत्माओं को समझाते हैं। तो नॉलेज आत्मा में होती है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो लाखों लाखों साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो किसको पता। तो वर्ल्ड की बाबा कहते आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही है, दुनिया की आयु की बात नहीं है, परंतु सिर्फ ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है। दुनिया तो सदा है ही है, पांच तत्व तो सदा है ही है, लेकिन ये सृष्टि चक्र का बाबा कहते हैं वो ज्ञान जरूर है। तो सिर्फ ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, ये भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है नई दुनिया से पुरानी दुनिया होने में? आधा कल्प के बाद तो पुरानी दुनिया ही कहेंगे ना। तो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है ये भी बाबा कहते कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सत्युग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सत्युग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। कलयुग को सत्युग बनाने लिए बाप को ही आना पड़ता है, सूर्य को उदय होना पड़ता है रात को सवेरा बनाने लिए। ये भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना विनाश पालना, ये तो कॉमन बात है। परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे कि हम स्थापना कर रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होना ये बुद्धि में रहेगा तो बाबा कहते तो खुशी तो बहुत होनी चाहिए। परंतु और निरंतर याद रहनी चाहिए बाबा की, बाबा हमको ये नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं, और कोई खंड वाले लायक नहीं बनते, क्योंकि भारत में ही फिर सत्युग आता है और कोई नहीं। हाँ, कौन विदेशों में भी कौन लायक बनते हैं? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो दूसरे धर्मों में गए, फिर वापस बाबा के बच्चे बने तो कहेंगे हम तो आदि भारतवासी है, तो फिर वापस ब्राह्मण बन जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे उसमें हुए थे, उसमें भी कन्वर्ट हो गए, वो आदि भारतवासी थे, फिर कैसे दूसरे धर्म में चले गए, फिर वापस आएंगे बाबा के पास। तो जैसे उसमें चले गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, फिर वापस इसी में कन्वर्ट होंगे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तो मनुष्यों को समझाना है कि ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है, इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो, क्या समझा सकते हो? कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उसके नीचे कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर आओ यहाँ और मुख्य है इस सृष्टि पर जगत अम्बा जगत पिता। तो बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, वहां तो फरिश्ता ब्रह्मा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, स्थापना होती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। प्रजा यहाँ है तो स्थापना भी यहाँ होगी। सूक्ष्म वतन में प्रजा शब्द तो नहीं होगा ना, वो तो सूक्ष्म ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाती है। ब्रह्मा बाबा को ये कितना नशा था, हाँ यही ब्रह्मा सो फिर अव्यक्त ब्रह्मा बनेगा। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं, ये राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही तो समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता है। जो दुनिया का मालिक है हाँ वही दुनिया के बारे में इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता है। वो नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए। अब जिसको समझाते हैं उसको कैसे हम परखे, वो ठीक समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हाँ वो हमारे कुल का है नहीं है, बाबा कहते उसको ही परखना होता है। तो बाबा कहते हैं परखने की बुद्धि चाहिए ना, कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है। हम समझाते जाते और वो बस क्या सचमुच समझ रहा है या नहीं, तो ये भी परखने की बुद्धि चाहिए। तो नब्ज देखनी चाहिए, वो कितना समझ रहा है, कितना उसकी बुद्धि में बैठ रहा है, तो नब्ज देखनी चाहिए। तो बाबा ने दो वेदों को याद किया, दो एक को याद किया, पर बाबा दो का वर्णन करते हैं। एक वेद था जो बाबा ने वर्णन किया है, एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद होकर गया है। तो अजमल खां नामी ग्रामी वैद की क्या विशेषता थी कि वो कहते हैं देखने, वो देखता था मरीज को और देखते ही उनकी बीमारी का उनको पता चल जाता था। देखते ही नब्ज भी बाद में पकड़ेगा, पकड़ के देखेगा, लेकिन देखते ही तो उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। और दूसरा वो दिखाते हैं, बाबा कहते हैं कौन जिसके बारे में बाबा वर्णन करते हैं, एक अजमल खान और दूसरा लुकमान हकीम। बाबा कहते थे लुकमान हकीम था, वो भी बहुत बड़ा नामी ग्रामी था जैसे अजमल खान, वैसे लुकमान हकीम के पास सब बीमारियों की दवाई थी, सब दवाइयां, लेकिन एक दवाई नहीं थी उसके पास। कौन सी? जो वहम करता था ना उसकी दवाई नहीं थी। वहम सारा दिन वहम, ये करूंगा ये होगा, ये करूंगा वो होगा वो, ये वहम हर बात में वहम, ये बिल्ली काट के गई रास्ता अब मेरा काम नहीं होगा, इसने छींक मार दी ना अब मेरा काम नहीं होगा, इसने मेरे से पूछ लिया ना कहाँ जा रहे अब मेरा काम नहीं होगा, तो ये वहम। तो बाबा कहते हैं तो अजमल खान नामी ग्रामी वैद होकर गया है, दिल्ली करोल बाग है ना अपना सेंटर, उसके पास में अजमल खान पार्क है, देखा होगा तो ना। हाँ कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं, देखने से ही पता हो जाता है कि ये लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो है जैसा है उसी रूप से याद करना, ये बुद्धि का ही काम है, तो पर उनकी पर ये ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, योग युक्त होंगे माना जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। तो प्रीत बुद्धि होंगी तो योग युक्त है, तब कहेंगे कि पूरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। क्या करती है माया? माया भी देखती है कि हमारा ये ग्राहक जाता है, हाँ भगवान के पास जा रहा है, तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। नाक कान से पकड़ना माना, नाक से पकड़ना माना जैसे कोई नाक से पकड़ता है तो मनुष्य मुंह जाता है ना, श्वास नहीं ले पाता तो मुंह जाता है, ज्ञान में संशय पैदा हो जाता है। और कान से पकड़ना माना पंथ पर चिंतन करना, कान खुले रह जाते हैं, पकड़ने से कान खुल जाते हैं ना, तो पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, हाँ उसी वही कान में पड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, फिर जब धोखा खाते हैं, अब नाक कान से पकड़ लिया माया ने, पर चिंतन किया, पर निंदा ग्लानी ये सब जो कुछ और दूसरों को देखा, तो बाबा कहते जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं कि माया कि हमने माया से धोखा खाया है। हाँ देखो तब वो अब टू लेट हो गया, टू लेट हो गया तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तब समझते हैं कि हाँ माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है, पतित बुद्धि पावन तब बने जब बाबा की याद हो, पर कईयों को मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है वो सहज सब्जेक्ट एक ही है। कौन सी सब्जेक्ट? बस अलफ और बे, बस यही पढ़ना है हमें। बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं क्या? इतनी सहज पढ़ाई, वो दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं क्या? बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को और दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तो मुझे याद करो, आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का। तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है बाबा को देखने और समझने का, उसमें उसे काम ले लो, उससे काम लो, उस तीसरे नेत्र से काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि सहज है ज्ञान तो बुद्धि में सहज बैठ नहीं सकता है, अच्छा समझते हैं। परंतु योग बल कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में, अब कैसे पता चलता है कि देही अभिमानी पना कम है? थोड़ी बात में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बस कुछ कह दिया किसी ने छुई मुई, या तो एकदम मुरझा जाएंगे या तो गुस्सा आ जाएगा। तो थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान है मुख्य, फिर और विकार, लोभ मोह आदि में भी फंस पड़ते हैं। चलो काम क्रोध नहीं है तो लोभ मोह में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, अपनी देह में तो कितना मोह रहता है, सारा दिन अपने दुखड़े का ही वर्णन करेंगे, मेरे शरीर में ये हुआ सारा दिन, तो ये भी तो देह में इतना मोह है ना, तो देह में भी मोह रहता है ना। माताओं में मोह जास्ती होता है क्या माताएं? मोह जास्ती रहता है यहाँ, देखो बाबा तो कहते मोह जास्ती रहता है। जो माताएं समझती मेरे में कोई मोह नहीं है, हाथ उठाओ माताएं, देखो हिम्मत रख रही है, उठो हाथ उठाओ जो समझते हमको कोई मोह नहीं है। अच्छा इतनी थोड़ी, और बाकी देखो अभी धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। और जो भाई समझते हमारे में कोई क्रोध नहीं है, मोह नहीं होता, क्रोध ज्यादा होता है, जो समझते बिल्कुल क्रोध नहीं है हाथ उठाओ, देखो वो भी धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। चलो तो बाबा कहते हैं माताओं में मोह जास्ती होता है, अब बाबा उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है फिर मोह क्यों रखती हो? अरे भगवान मिला है फिर मोह क्यों रखती हो? उस समय शकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। हाँ जब मोह के वश होकर के बातचीत करती है या शकल होती है तो एकदम बंदर जैसी, हाँ बंदरी जैसी होती है। तो बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। अब वो कैसे उतरे? मोह में पड़े रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? वो तो और ही चढ़ेगा ना, क्योंकि मोह वश उनको याद करते हैं। पर तो वो कैसे उतरे? मौत भी बुरी गति से होता है। कितना कैसा कैसा मौत होता है कलयुगी दुनिया में। मौत भी बुरी गति से होता है। वो तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास। वो गैस निकला और वो जैसे उसको सांस में गया, खत्म, मनुष्य मर गया। गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है, एनेस्थीसिया देते ना, उसी समय वो बेहोश हो जाता है। तो ये तो गया, मर जाता है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है, ये भी उनको बनाने, ये भी उनको बनाने ही है। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स उनको बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है, ये बनाना छोड़ेंगे नहीं। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल कैलमिटी से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था। महाभारत में ये सब दिखाया है कैसे हुआ था, विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो क्या होगा? तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आई जाएंगे। जिस समय ड्रामा में होगा विनाश का, उस समय वो एक्ट करेंगे, वो बॉम्ब छोड़ेंगे, एक्ट में आई जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहां बहेगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, भारत में तो सिविल वॉर होगी ना, गृह युद्ध। और गृह युद्ध में क्या होता है, एक दो को मारते, बंदूकें चलती है, तलवारें चलती है, चाकू चलते हैं, बस ये होता है। तो उसमें तो खून निकलता, रक्त निकलता है, वो रक्त से मर जाते हैं। वहाँ बॉम्ब्स जो गिराते हैं उसमें तो जल जाते हैं, तो वो रक्त की नदियां नहीं रहती है, वो तो सब राख हो जाता है। तो बाबा कहते हैं रक्त की नदियां यहां बहेंगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। सब नहीं जानते कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम, ये बहुत थोड़े समझते हैं। तो सदैव ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा, जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी-छी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी, बस अलफ और बे, अलफ को याद करो बे बादशाही तुम्हारी। सेकंड में बादशाही, बादशाह का बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना, ना बादशाह को बच्चा पैदा हुआ तो वो भी तो फिर बादशाह बनेगा ना, तो सेकंड लगता है, कितनी देर लगती है, तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसीलिए गाया जाता है क्या, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस, सब सेकंड में, कितना अच्छा है। तो श्री व्रत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। हाँ, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर राय लेनी होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। कैसे मिटेगा ममत्व, जब ट्रस्टी होकर रहेंगे। तो ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। ट्रस्टी माना ये सब बाबा का है, मुझे केवल संभालना है, तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना ये मासी का घर नहीं है, क्योंकि सारा दिन मेरा 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 करते थे, ये मासी का घर तो नहीं है ना ट्रस्टी बनना। ये खुद ट्रस्टी बने, ब्रह्मा बाबा कैसे ट्रस्टी बने, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं ब्रह्मा बाबा, अपने बच्चों का, हम सब बच्चे हमको भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या, ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, बाबा के लिए स्वेटर बना के लाते, बाबा ये आपको ही पहनना है। और कोई बच्चा आया जिनके पास स्वेटर नहीं था, बाबा ने अपना स्वेटर दे दिया, तो वो बच्चा देखता था कि अरे ये स्वेटर तो मैंने बाबा को दिया पहनने के लिए, ये कैसे पहन रहा है, तो उनसे पूछता ये कहाँ से मिला, बोले बाबा ने दिया, बाबा हमने तो आपको दिया, तो बाबा तो उनको बाबा कहते थे बच्चे आपने बाबा को दिया, अब आप ट्रस्टी हो गए, आपका तो नहीं रहा ना, फिर ये बाबा के ऊपर है किसको भी देवे। हाँ, ऐसे तो नहीं कि हमने आपको पहनने के लिए दिया, आपने किसी और को क्यों दिया, नहीं। तो बाबा कहते हैं ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो, ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। हाँ, बुलाया है ना भगवान को, ले चलो पावन दुनिया में, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं है। अब कह तो दिया भगवान को मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन जब आया है भगवान ले चलने तो कहते नहीं 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 मेरा मेरा ये मेरा करते। तो बाबा कहते इसका अर्थ भी नहीं समझते, पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, सभी शरीरों के साथ ले जाएगा, शरीर खत्म होंगे ना, पतित पावन आएगा घर ले जाएगा, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। हाँ, ये तो फिर भी साकार मुरली है, तब बाबा कहते थे मनसा में तो तूफान आएंगे पर कर्म इंद्रियों से नहीं विकर्म करना है। परंतु अभी अवैध मुरलियों में तो बाबा इतना और गहराई में ले जाते हैं, संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए बुरा संकल्प। तो बाबा कहते कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, वो बेकायदे हो जाता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, ये इनका शरीर है ना, ये शरीर तो इनका है, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, ये आधार लेते हैं। तुमको याद तो बाप को करना है, तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा है, शिव भी बाबा है, दोनों बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उनको, चाचा भाई है ना ब्रह्मा के, तो विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा माना पिता, तो विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करते हैं, दादा माना ग्रैंडफादर, दादा इनमें, इस दादा में वो दादा ग्रैंडफादर प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं, हम ग्रैंडफादर का वर्षा फादर द्वारा लेते हैं। तो वो दादा माना ग्रैंडफादर है निराकार और बाप है साकार, ये बाप दादा, ये ऐसा कोड वर्ड है ब्राह्मणों का जो हम बच्चे ही जानते हैं इसका अर्थ बाप। ये वंडरफुल नई बातें हैं ना, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं परंतु समझते नहीं है दुनिया में, शिव को उड़ा दिया है, केवल त्रिमूर्ति दिखाते हैं, शिव को जो उनका पिता है उसको उनको उड़ा दिया। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना, हम स्टूडेंट्स हैं, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो, ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए, बाबा कहते स्कूलों में जाओ कॉलेजेस में जाओ, हाँ वहां जाकर के ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है ये भी समझाओ। अभी तो बहुत जाते हैं स्कूलों कॉलेजेस में, बहुत सेवा करते हैं। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नरक बन जाता है, ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है ये तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए, जो लौकिक टीचर्स हैं उनको भी ये ज्ञान देना चाहिए, स्टूडेंट्स को तो देना ही है पर टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वो है जिस्मानी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज, वो मनुष्य देते हैं ये गॉड फादर देते हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा, बीज रूप है तो मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मुहा बन ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरा, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना चाहिए, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भवन, ब्रह्मा बाबा कितने परोपकारी थे, तो ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। हाँ बाबा ने कहा तस्वीर तो बना चुके हो अपनी तदवीर से, तस्वीर बना चुके हैं, बस बाकी फाइनल टचिंग करनी है, तब संपूर्ण बनेंगे। तो श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। कैसे बनाई है तस्वीर? श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ बाकी क्या रहा हुआ है? अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है। जैसे टचिंग करते हैं ना, वह थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो उसको फिर पेंट में से ठीक करते हैं। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए क्या करो? लास्ट टचिंग कैसे होगी? इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी बनो अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा नहीं, मेरा सो तेरा, हाँ ये भी करो। तो बाबा कहते हैं सदा स्वार्थ भाव से मुक्त रहो, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। परोपकारी बनने के लिए निस्वार्थ भाव चाहिए, ये देने की भावना, बड़ा दिल, तभी तो बन सकेंगे ना परोपकारी। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अपनी शक्तिशाली वंशा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा, अब ये क्या करना है आज विशेष, ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे, दूर को देंगे तो नजदीक वालों को अपने आप मिलती रहेगी। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऊंच बन जाएगा। तो इसीलिए क्या अभ्यास करो, तो आज का अभ्यास क्या है? स्वमान में रहो क्या, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, बस ये रखो बुद्धि में, विश्व सेवाधारी हूँ। और अभ्यास क्या करो योग का, मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद का सेवाधारी हूँ। बेहद की भावना रख, अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है, ये महसूस करो। धारणा क्या करो? फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान स्थिति में रहना है। और चिंतन क्या करो सारे दिन में? वायुमंडल शक्तिशाली कैसे बने, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रहे, इस पर चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम बताएंगे।